मेघनाद बड़े घबराए। मेघनाद ने कहा, पिताजी पहला ही दिन है और अपनी तो एक तिहाई सेना समाप्त हो गई, तो चलो मैं ब्रह्मास्त्र लेकर के जाता हूं महाराज। ब्रह्मास्त्र लेकर के राक्षसी सेना में घुस गया मेघनाद। नाना प्रकार के शस्त्र जानने वाला वो ऐसा शस्त्र फेंके स्वयं अदृश्य हो जाए शस्त्र फेंके। एक बार तो सारा ये वानर सैन्य बल घबरा गया। राम जी महाराज ने कहा, अरे लक्ष्मण हमको धनुष दे हो रे, ये ब्रह्मास्त्र चला करके सबको भस्म कर देगा, अभी मैं इसका बल देखता हूं। मेघनाद ने भी देख लिया कि अब राम जी भी ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, तो वो राम जी अस्त्र बाण यू रखने लगे, उससे पहले ही मेघनाद तो लंका में चला गया। बड़ा मायावी था वो। अब बंदरों की बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई। राम जी महाराज बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के राम जी ने हनुमान से कहा, रे हनुमान इन बंदरों को जिलाना तो बहुत जरूरी है, कि महाराज मरे हुए को कैसे जिलाए, कि देखो एक जड़ी बूटी है, तुम यहां से सीधे जाओ, सीधे जाकर क्षीर सागर के पास एक द्रोणाचल पर्वत है, उस द्रोणाचल पर्वत के ऊपर ऐसी ऐसी एक दिव्य औषधि है, जगमगाती रहती है, अपने आप स्वतः प्रकाश करती है, जम जगबुग करने वाली, उस औषधि को लिया, उसका नाम संजीवनी औषधि है, वो मरे हुए को जिला देगी, जल्दी करो। तो आज्ञा प्रमाणम, आपकी आज्ञा ही बस चाहिए हमको। तो हनुमान जी महाराज तुरंत गए और वो लेकर के आ गए। अब आप सोच रहे हैं कि अरे ये क्या हुआ, इस रामायण में ये क्या लिखा है, न तो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और न वो कालनेमी आया और न अयोध्या के ऊपर से गए। देखो भाई ये आनंद तो तुलसीदास जी महाराज लेंगे, ये दूसरा आनंद दे रहे हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि वो लाए, एक श्लोक में सब कर रहे हैं, वो लाए दवा औषधि लेकर आए, ला करके सबको दे दी, सब जीवित हो गए और हनुमान जी ने वापिस वो औषधि वहीं पर रख दी, द्रोणाचल पर्वत पर रख दी और वापिस आ गए। क्यों वहां क्यों रखी, अपने यहां काम आती कि नहीं, क्या पता इस औषधि पर शत्रु यदि जो है अपना अधिकार जमा लेवे तो। दूसरी बात है कि वो औषधि लंका के वन में रहने लायक थी नहीं, वो औषधि केवल वहां से लाओ और है काम में ले, बस वहीं तक काम दे सकती, वहां उसको रख देवे सुरक्षित, इसके लिए औषधि का प्रभाव नहीं था। रावण को पता चला कि अभी मेघनाद ने जिन जिन सैनिकों को मारा था, बानरों को, वो सब जीवित हो गए रातों रात, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मेघनाद ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, देखो मैंने जीवन में बहुत युद्ध किया है, आप लोगों की सहायता से किया है, पर कभी मैं पराजित नहीं हुआ, कभी मेरा दिल नहीं टूटा, मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसा शत्रु मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे युद्ध करना है। मरे हुए बांदरों को जिला दिया, उस सेना को कौन जीत सकता है, मरे हुए को जीत, मरते जाएंगे तो जीते जाएंगे, लेकिन भाई अब युद्ध चालू हो गया सो हो गया, ये शूरवीरों का काम है, हारे चाहे जीते, पर आप में से बताओ मेरा प्रिय करने वाले कौन है। आप में से जो युद्ध से भागते हो वो पहले से युद्ध में न जाए, युद्ध से जो भागेंगे वो मेरे यहां मारे जाएंगे। तान हनिष्याम्य हम सर्वान, मैं उन सबको मारूंगा, और मेरे साथ युद्ध करने की जिनके अंदर क्षमता है और मेरे प्रिय करने वाले हैं वो मेरे साथ रहे। कह नहीं महाराज हम आपके साथ हैं। अतिकाय प्रहस्त महानाद महोदर देवशत्रु निकुंभ देवांतक नरांतक सब उनके साथ गए, अपने सारे शस्त्र ले लेकर के गए। वानरों ने देखा कि भाई अब ये सेना बहुत जो है जोश खा करके आ रही है, तो उन्होंने भी पर्वत ले लिए, उन्होंने भी मुक्के से दांतों से उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। रामेण निहिता केचित, कई तो राम जी ने मार दिया, कई सुग्रीव ने मार दिया, कई हनुमान ने, कई अंगद ने, कई लक्ष्मण जी ने, ऐसे करके राक्षसों का बहुत बड़ा विनाश हुआ। बानर थे वो युद्ध करते करते जब हार जाते थे ना, ध्यान से सुनना हो ये बहुत अच्छी बात है, युद्ध करते करते जब यूं शिथिल हो जाते, बल उनका क्षीण होता, तो तुरंत राम जी के दर्शन करके तेज आ जाता उनमें। ऐसे ही भाई सेठ जी ने कहा कि आप भी कोई काम करो, कोई सोचो या कोई काम करो तो थक जाओ तो सीधे भगवान का चित्र रखो घर में, भगवान के दर्शन कर लिया करो, भगवान के दर्शन करने से आपको मन में शांति मिलेगी। शिक्षा दे रही है रामायण थोड़ा ही होगी। इसीलिए अच्छे समझदार आदमी होते हैं वो अपने ऑफिस में अपने वहां भगवान का चित्र रखते हैं, भगवान से बल लेते हैं, शांति लेते हैं, कार्य करने की क्षमता मांगते हैं। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूं अब मैं तेरे काज, भाई जी की बनाई हुई प्रार्थना है। आप ही का काम है पर प्रभु, आप ही का काम कर रहा हूं और आपका ही बल हमको चाहिए। शिथिलता नहीं आएगी, टेंशन नहीं आएगा, इतना जितना जितना हम भगवान पर छोड़ते जाएंगे उतने उतना उनके अंदर जो है दिमाग के अंदर ताजगी रहेगी। कितना ही काम कर लो, साफ लिखा है राम तेज समाविश्य बानरा बलिनो भवन। बानर तो बलवान हो जाते थे और राम शक्ति विहीना नाम एवं शक्ति कुतो भवेत। और इधर राक्षस जिनके पास राम जी की शक्ति नहीं थी उनके अंदर ऐसी ऐसी जोश की बात आ ही नहीं सकती थी। सर्वेश्वर सर्वमयो विधाता माया मनुष्यत्व विडम्बनेन सदा चिदानंदमयोपि रामो युद्धादि लीलाम वितनोति मायाम। ये तो युद्धादि की लीला तो केवल लीला के लिए करते हैं, अपना पौरुष दिखाते हैं तो अपने मन में अरे राम जी की ये ताकत, राम जी की ये ताकत। यदि लीला नहीं करें तो राम जी के पौरुष का हम ज्ञान भी क्या कर सकते हैं। बड़ा भारी युद्ध हुआ और ये अतिकाय वगैरह कई नष्ट हो गए। रावण को बड़ा दुख हुआ। रावण ने कहा कि अब तो मैं स्वयं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। रावण युद्ध करने के लिए रवाना हुआ। स्वयं जगाम युद्धाय रामेण सह राक्षसे। अब वो स्वयं आया एक बड़ा अच्छा रथ के ऊपर बैठ करके, सब प्रकार के शस्त्र उसने रख लिए और जाकर के सीधा राम जी के सामने खड़ा हो गया। बानरान बहुशो कैसे बानर सामने आ गए राम जी के सामने, हम मरेंगे पहले, राम के ऊपर कैसे बाण लगाया। उसने बाण लगाना चालू किया, ऐसे ऐसे बाण थे जो शरीर में घुसते ही अंदर जहर फैला देते थे। ऐसे बाण, ऐसे बाण चलाता था कि अंदर बाण जाते ही वो आग पैदा कर देते थे। तो बड़े बड़े बानर बेचारे मूर्छित हो गए, इधर उधर खंडित हो गए। इधर में विभीषण जी आए गदा लेकर के। विभीषण को देखा आग बबूला हो गया रावण। विभीषण लंका के विरोध में तो युद्ध में खड़ा हुआ है, उस सजर्जा महाशक्ति में एक बड़ी भारी शक्ति थी, वो अमोघ शक्ति, वो शक्ति उसने यूं फेंकी और वो शक्ति जाकर के विभीषण के लगती। इससे पहले ही लक्ष्मण जी ने विचार किया, अरे इसको राम जी ने लंका का राजा बनाया है, राम जी ने इसको अपनी शरण में लिया है, अतएव राम जी के शरण की मुझे रक्षा करनी है। लक्ष्मण जी तत्काल विभीषण के आगे आकर खड़े हो गए और वो शक्ति लक्ष्मण जी के छाती में लगी। सा शक्ति लक्ष्मण तनु विवेशामोघ शक्ति तह, अमोघ शक्ति थी वो। संसार के अंदर जितनी शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां माया से पैदा होती हैं और उस माया के खास आधारभूत लक्ष्मण जी हैं। अब वो लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति कितनी लगती, लगी तो सही, लक्ष्मण जी एकदम मूर्छित अचेत हो गए, पड़ गए। रावण ने देखा कि बड़ा अच्छा मौका है, पहले तो हमने सीता को ऐसे हरा था, आज इन बंदरों के बीच में लक्ष्मण को हर लेता हूं और रथ में बैठा कर आकाश में चला जाऊंगा और फिर राम को कहूंगा कि राम यदि सीता के साथ तुम वहां होते पंचवटी में तो जैसे अभी लक्ष्मण को ले जा रहा हूं ऐसे ही मैं सीता को लाता। तुमने कहा ना तुम्हारा बल पौरुष दिखाओ कि सीता को हरते समय दो तुम्हारा पौरुष था, ये ऐसा ही मेरा पौरुष था। ऐसे लालायित होकर के वो लक्ष्मण जी के पास गया, लक्ष्मण जी को उठाने लगा हस्तिर तोलई तुम शक्तो न बभुवाती विस्मित है, खूब उठाने की किया लेकिन लक्ष्मण जी तो उससे उठे ही नहीं। क्यों उठेंगे पार्वती, सारे जगत को अपने फणों पर रखने वाले शेषा उतार लक्ष्मण जी महाराज, वो लक्ष्मण जी महाराज रावण से कैसे उठ सकते हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है वो, तो वो नहीं उठा सके। रावण देखता है कि क्या बात है, तो उठता ही नहीं, खूब जोर लगाया। दूर से हनुमान जी ने देख लिया कि रावण तो इनको मार करके उठाना चाहता है और ये बताना चाहता है कि देखो जिस पौरुष को दिखाने के लिए कहा ये मेरा वो पौरुष है, तुम्हारा लक्ष्मण ये देखो मैं ले जा रहा हूं। हनुमान जी महाराज जहां थे वहीं से उछल करके आए और रावण के छाती में लात मार करके उसको दूर कर गए और फिर मुक्के मारे उसके। जगह न उर्सी क्रुद्धो वज्र कल्पेन मुष्टिना, वो जो है वो मुक्के के लगने से उसके नाक से आंख से और जो है कानों से खूब खून बहने लगा और उठा करके उसके सारथी ने उसको रथ में पटक दिया और वो तो वहां से रावण रवाना, सारथी उसको लेकर रवाना हुआ और इधर हनुमान जी महाराज ने बड़े आसानी से लक्ष्मण जी को उठा लिया और लेकर के राम जी के पास आ गए और वो शक्ति थी वो शक्ति भी वहां से अदृश्य हो गई और अदृश्य होकर के वापिस रावण के पास चली गई। रावणस्य रथम प्रागात, रावण के रथ में जाकर बैठ गई। संज्ञाम वाप्य जग्राह बाणासनम अथोरुषा, अब जो है थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया ना, थोड़ी देर बाद उसको रथ में वापिस रावण को मूर्छा जगी, मूर्छा जगी तो उसने सारथी को बहुत भला बुरा कहा, अरे मुझे यहां क्यों ले आए। सारथी ने कहा कि आप बेहोश हो गए थे इसलिए ले आए, नहीं मुझे वापिस उधर ले चलो, अभी आपका जाना ठीक नहीं है। नहीं हम युद्ध में पीछे हटने वाले नहीं है, तो कहा ठीक है देव खीर में हाथ। अब वापिस आया राम जी की तरफ और फिर राम जी महाराज का उसके साथ में युद्ध होने लगा। तो हनुमान जी ने कहा महाराज वो रथ पर बैठा हुआ है, हम आपको जमीन पर नहीं देख सकते। हनुमान जी आए और अपने कंधे पर राम जी को बैठा लिए और राम जी ने फिर बाण छोड़ना चालू किया, ए राक्षस साधम कहां जाता है मेरा अपराध करना और मेरे साथ में युद्ध भी करना, ऐसे दो बात नहीं निभ सकती। ये न बाणे ने निहिता राक्षसास्ते जनालय, मैंने जो है जनस्थान में जिन बाणों से राक्षसों को मारा, 14,000 राक्षसों को मारा है, उसी बाण से हम तुम्हारा भी वध करेंगे, ऐसा कहकर के और जो है भगवान बाण चलाने लगे। रावण भी बाण चलाने, रावण ने देखा कि पहले राम को नहीं पहले इस हनुमान के ऊपर बाण चलाओ, एक तो इसने राम जी को ऊंचा कर लिया और हम जब बाण लगाते हैं तो मर जाए तब नीचा कर लेता है, फिर ऊंचा कर लेता है, नीचा कर लेता है, हनुमान पर बाण लगाना चालू किया। वहंतम राघवम संखे शरीर तीक्ष्ण रताड़यत, हनुमान जी महाराज पर जब यूं बाण लगाने लगा तब हनुमान जी महाराज ने अपने आप को और भी बड़ा कर लिया और राम जी महाराज उसके बाणों को, अब देखो उसका रथ था यूं हनुमान जी हो गए यूं, अब राम जी यूं उसके ऊपर बाण लगाए यूं। ततो दृष्ट्वा हनुमंतम सवर्णम, कुछ बाण तो हनुमान जी के लगे, हनुमान जी के लगने पर राम जी महाराज फिर क्रुद्ध हुए कि अच्छा ये तो हमारे हनुमान के ऊपर बाण लगाता है, तो उसके घोड़े रथ सारथी सब उन्होंने अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिए। और दूसरा एक बाण लगाया, उस बाण से रावण के यहां शरीर में उसके बहुत जोर से चोट लगी और वो घायल हो गया। घायल होते समय उसके हाथ ऐसे पड़ गया, गिर गया। राम जी ने कहा जाओ रावण लंका में जाओ, प्रविश्य लंकाम आश्वास्य स्वस्थ हो जाओ, ये सब तुम्हारे व्रण हुए हुए हैं, ये फोड़ा फुंसी हुए हुए, इन सब को तुम पहले ठीक कर आओ, बाणों से घायल हो गए, बाणों की मरहम पट्टी करो और अपने सबको आश्वासित करो, जाओ यहां से, तुम घायल हो गए हो, मैं तुमको घायल को नहीं मारता। रावण इतना लज्जित हुआ, इतना राम जी ने कोई सैनिक रावण पर आक्रमण नहीं करेगा, घायल अवस्था में इसको जाने दो। महत्या लज्जया युक्त है, रावण देखने लगा मुझे पूछेंगे वहां कि महाराज आज के युद्ध में क्या हुआ, इससे तो अच्छा मैं मर जाता, लेकिन अब क्या करें, वो अब सारथी भी नहीं, कोई कुछ नहीं आ, वो वहां से घायल अवस्था में ही आया। वो तो ऐसी बात हुई। इधर रामोपी लक्ष्मणम दृष्ट्वा, राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को देखा कि लक्ष्मण जी तो बड़े मूर्छित हुए हुए जमीन पर गिरे हुए हैं। भगवान ने बड़ा शोक किया। पार्वती, भगवान के अंदर शोक है ही नहीं, बाहर से शोक किया लोगों को दिखाने के लिए, और हनुमान से कहा, हनुमान लक्ष्मण को जिवाओ ना, वही औषधि लेकर के आओ जो तुम पहले बंदरों के लिए लेकर के आए थे। हनुमान जी ने कहा, अभी जाते हैं महाराज। बड़े वायु वेग से हनुमान जी महाराज रवाना हुए। ये रात की घटना है। कोई राक्षसों ने हनुमान जी को यूं जाते हुए देख लिया। देखो राक्षसों के पास रात में ज्यादा बल आता है, तो वो जाते जाते देख लिया, तो गुप्तचरों ने आकर रावण से निवेदन किया, महाराज हनुमान फिर औषध लेने के लिए जा रहा है और क्षीर सागर के पार जाकर उसी औषधि को लाने जा रहा है जो पहले लेकर के आया था। रावण को ये हनुमान नाम से बड़ी चिढ़ थी कि ये एक ऐसा है इनमें। तब वो रावण उस समय बड़ा चिंतित हो गया, और चिंतित होकर के रावण देखा कि क्या करूं। वो अकेला ही कालनेमी के घर पर गया। कालनेमी के घर गया तो कालनेमी ने उनका बड़ा आदर किया। आइए महाराज, बेराजिए, किम करोमी, कैसे गाया, आपका क्या स्वागत करूं, कैसे किए। रावण ने कहा, देखो भाई, मैं बहुत दुखी होकर तुम्हारे पास आया हूं। मेरे सिर के ऊपर मौसी नाच रही है, युद्ध हो रहा है। इस युद्ध के अंदर मैंने लक्ष्मण को बड़ा भारी शक्ति के द्वारा मूर्छित कर दिया है, एक तरह से मार ही दिया है। वो मरने वाला है, बस क्षण दो क्षण का ही हो सकता है, परंतु उसके लिए हनुमान दिव्य औषधि लेकर के दिव्य औषधि लेने के लिए क्षीर सागर की तरफ जा रहा है, तुम कुछ न कुछ उसके मार्ग में बाधा डाल दो, और ऐसे बाधा डालो, ऐसा बाधा डालो उसको मोहित कर लो, समय निकल जाए। ये रात का समय निकल जाएगा तो फिर वो औषधि को पहचान भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो औषधि तो जगबूझ जगबूझ करने वाली है, तो वो पहचान नहीं पाएगा और फिर लक्ष्मण मर जाएगा। लक्ष्मण मर जाएगा तो फिर राम यहां क्या करेगा, और सारी सेना चली जाएगी और मुझे अनायास ही विजय मिल जाएगी। दुनिया को मैं ये कहने वाला हूंगा कि देखो लंका की तरफ जिसने भी आंख उठाई लंका से परास्त होकर के गया है। और यदि राम युद्ध भी करेगा तो भारिया का तो हरण मैंने कर लिया, हनुमान को तुमने अपने यहां पर छिपा लिया, और लक्ष्मण उनका मारा गया। अब वो सोचेगा कि अब युद्ध करने से क्या लाभ, या तो वो मारा जाएगा और या फिर यहां से भग जाएगा, रावण की विजय होगी। सब विजय तुम्हारे हाथ में काल ने भी। कालनेमी ने कहा कि हे रावणेश, हे राक्षस राज, मुझे तो आप जैसा कहते हो वैसा करना है, परंतु कुछ काम करने से पहले मनुष्य को अपने विचार और विवेक को सामने रखना चाहिए, निष्पक्ष होकर विचार करना चाहिए। आपने ये कभी विचार ही नहीं किया कि जिसने 14,000 राक्षसों को, खरदूषण को मार दिया है, वो कोई सामान्य आपका बैरी हो सकता है क्या? अच्छा ये बताओ कि सीता का हरण आपने पहले किया या खरदूषण आदि का उसने वध पहले किया? कि खरदूषण आदि का वध उसने पहले किया, तो उसने पहले किया तो उसने अपनी शक्ति आपको बता दी है कि युद्ध आप मेरे से करोगे तो ये मेरी शक्ति है। आपने तो उसके बाद सीता हरण किया, तो आपने विवेक से काम किया ही नहीं। हता पुत्रा पौत्राश्च बांधवा राक्षसाश्च थे, आप अभी भी विचार करो कितनी सेना आपकी मारी गई है, आपका सारा असुर कुल समाप्त तो हो गया। यदि आप जीवित भी रहोगे तो सीता लेकर के राज्य लेकर के क्या करोगे? ये शरीर कितने दिन का है रावण? आप युद्ध भूमि के अंदर बैठे हुए हो, वहां तो मृत्यु हाथ में लेकर के योद्धा आते हैं, आप अभी भी नहीं समझ रहे हो? रावण आप वापस मुड़ जाओ और युद्ध के अंदर जाकर खड़े हो जाओ, मैदान में खड़े होकर सबके बीच में कह दो, हे राम यही हो युद्ध विराम, और मैं हूं आपकी चरण शरण में, ए विभीषण इस लंका का राज्य मैं तुमको देता हूं और मैं वन के अंदर जाकर तपस्या करता हूं। आपने राम के विषय में सुना नहीं, पिता ने राज्य दिया और राम के छोटे भाई को राज्य मिला, उसने लाकर राम को दे दिया, तो आज देखो जो है राम के हृदय में अपने भाई के प्रति कितना स्थान है। आप ऐसा करो, अभी जाओ स्नान करो, संध्या वंदन करो, एकांत में बैठ करके भगवान के जो जो बातें आपने सुनी है उनको आप सकारात्मक दृष्टि से देखो और उनके चरणों का ध्यान करो, आपको इतनी सद्बुद्धि मिलेगी रावण, आपको इतनी शांति मिलेगी, आपको ये अपने पाप इतने बुरे लगेंगे, आप स्वतः ही राम जी की शरण में चले जाओगे। रावण आप शरीर नहीं हो, आपका असली परिचय आपकी आत्मा देगी, आप अपनी आत्मा को देखो। आप जितना भी दिखाई देता है सुनाई देता है ये सब माया का रूप समझो, ये प्रकृति है माया है, संसार रूपी वृक्ष का मूल बीज भगवान है और भगवान जीवों के कर्म के अनुसार उनको तत्त्व शरीरों में भेजते हैं। इसी माया के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पुत्र है और जो है हिंसा तृष्णा आदि ये इसकी पुत्रियां हैं। अतएव उस माया के जगत से अपने को अलग करो। शरीर से जब तुम अलग हो जाओगे तो शरीर की क्रिया को तुम अपनी क्रिया की भी नहीं मानोगे तो फिर भोगना भी नहीं होगा, क्योंकि आप अत्यंत शुद्ध हो। अच्छे गुरु के पास बैठकर आप ये शिक्षा लीजिए। जो ऊपर ऊपर से तो बात बनाते हैं, भीतर में अपना स्वार्थ साधते हैं, ऐसों से ब्रह्म ज्ञान रावण कभी नहीं मिल सकता। तुम जीते हुए मुक्त हो, शरीर के रहते हुए भी तुम शरीर से अलग हो, अपनी दिव्यता पर विचार करो। और यदि अपने निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन आत्म तत्व का विचार नहीं कर सकते हो तो लंका के अंदर भगवान के उस रूप का ध्यान करो ना, कि जिनके हाथ में बड़ा सुंदर धनुष है बाण है, कभी तुमने उनके नेत्र को गौर से नहीं देखा, कैसे कमल नेत्र है उनके, शत्रु बुद्धि से देखा तो भी उनका शरीर सौंदर्य नहीं देखा, कैसे सुंदर होठों पर मुस्कान है, कैसी सुंदर उनकी ये त्वचा है, और वे बड़े आज ऐसा समझो कि मेरा हृदय है ये सिंहासन है, इसमें राम और सीता दोनों विराजमान है। वीरासन से तुम उनका दर्शन करो, किरीट केयूर आदि उन्होंने धारण किया इस रूप से उनके दर्शन करो, उनकी वनमाला का ध्यान करो, चरणों के नूपुरों का ध्यान करो, और उनकी सेवा में लक्ष्मण जी खड़े हैं इस ढंग से तुम उनका ध्यान करो, और ध्यान करते हुए उनका चरित्र सुनो, श्रृणुवै चरितम तस्य, उसके चरित्र सुनोगे उसकी कथा सुनोगे बड़ी निर्मलता आएगी। ऐसा करोगे तुम्हारे सारे पाप नष्ट एक क्षण में हो जाएंगे, जैसे रुई का ढेर एक चिंगारी दिखाते ही नष्ट हो जाती है, रुई का ढेर नष्ट हो जाता है। एक गोदाम के अंदर एक जगह की बात है, थोड़ा सा तार सर्किट हो रहे इतनी सी चिंगारी पैदा हुई, वो गोदाम था उसमें रुई की रुई जल गई। ऐसे जरा सी चिंगारी जैसे रुई को जला देती है, ऐसे इतने सी भी भगवान की भक्ति होती है सारे पाप राशि को समाप्त कर देती है। इसलिए भजस्व रामम, भगवान का भजन करो, आप इस युद्ध के बखेड़े में मत पड़ो, बैर त्याग दो और नाम रूप से रहित परब्रह्म परमात्मा के भजन में लग जाओ। महादेव जी महाराज कहते हैं कि पार्वती रावण को जगह 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 अच्छी अच्छी बात समझाने वाले कितने अच्छे अच्छे बातें उसके कानों में पड़ी, फिर भी अमृत के समान इन वचनों का उसने निरादर करते हुए इतना क्रोधाभिभूत हो गया जैसे आग में घी डालते हो, एकदम भभकती है आग, ऐसे भभकते गए, काल नेमी दुरात्मन शिक्षा देने आया है, हम तुमको शिक्षा के लिए थोड़े हम तुमसे मिलने आए, तू कोई राम का दास है, तुझे कोई राम ने उत्कोष दिया है, किंचित गृहित्वा, तुझे राम ने कुछ न कुछ दे दिया है, लालच दिया है, उस लालच के वशीभूत होकर तू राम की महिमा करता है, तू राम की महिमा कब से कहने लगा रे, तू राम की महिमा कब से कहने लगा। काल नेमी ने कहा कि हे रावण, देव किम क्रुधा क्रोध नाराज होते हो, आप यही तो कहते हो कि हनुमान को तुम रोको तो ठीक है रोक लेता हूं, रुकेगा नहीं, परिणाम बता देता हूं, रुकेगा नहीं और काम होकर के रहेगा। अब देखो मैं तो आपके कहे के अनुसार सब काम कर लूंगा, लेकिन इस युद्ध के अंदर अंतिम विजय राम की होगी। कालनेमी वहां से रवाना हो गया, रावण मुंह लटकाते आ गया, कालनेमी गया और वो उसी समय माया के द्वारा हिमालय के पास जाकर उसने ऐसा सुंदर तपोवन बनाया, माया से ही ऋषि मुनि और चेला चांटी बना लिए उसने वहां, और बड़े अच्छे वृक्ष तालाब और माया से कालनेमी ने बहुत कुछ बनाया। इधर से हनुमान जी आ रहे थे, हनुमान जी ने देखा कि पहले भी इस मार्ग में आया, इतना सुंदर मुझे ये आश्रम दिखाई नहीं दिया, कहीं मैं मार्ग तो नहीं भटक गया, अरे इस आश्रम में तो बहुत ऋषि मुनि रहते हैं, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी ऋषि मुनि रहते हैं, बड़ा अच्छा आश्रम होना चाहिए। मार्गो भ्रंशितो वा में भ्रमो वा चित्त संभव है, और या कोई मैं भ्रमित रह गया होगा, चित्त मेरा भ्रमित हो गया होगा, और हर आदमी कोई चलते फिरते हर चीज याद थोड़ी रखता है, देखता थोड़ी, आया भी होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा, अब ध्यान देते हैं। हनुमान जी महाराज उस आश्रम में आए और चार कोस में वो आश्रम फैला हुआ था, योजनायतम आश्रम के अंदर रहे, इतने अच्छे अच्छे फल फूल लगे हुए, सब मायावी, वहां जाने पर कोई बैर भाव भी न हो ऐसा उनको लगा। कालनेमी राक्षस वहां पर बैठ करके और यज्ञ कर रहा था, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा अग्नये स्वाहा, तो अरे तो बड़े देवताओं के लिए यज्ञ कर रहा है भाई, इंद्रियोगम समास्थाये चकार शिव पूजनम, पास में भगवान शंकर की मूर्ति उसकी पूजा कर रहा है। हनुमान जी आए, बड़ी नम्रता से उन्होंने कालनेमी को प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज मैं राम का दूत हूं, मैं वायुपुत्र हनुमान हूं, राम का सेवक हूं, राम जी के कार्य के लिए क्षीर सागर के पास द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी औषध लेने जा रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपसे एक प्रार्थना है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, यदि आप कहीं हमको जल पिला दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं खूब जल पिया करता हूं, तो आप मुझे जल पिला दीजिए। काल ने मैंने कहा आओ, अरे भाई लो हमारा कमंडल है, इस कमंडल से जल पियो। नहीं 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 नहीं, कमंडल से मैं जल नहीं पी सकता, क्योंकि बहुत जो है इसमें थोड़ा जल है, मुझे तो ज्यादा जल चाहिए, तो ये फल खाओ, ये पके हुए फल है, भूख तो मुझे भी नहीं लगी है, भूख मुझे नहीं लगी है, मुझे तो केवल प्यास लगी है। अच्छी बात है, तो देखो यहां पर बहुत अच्छा जलाशय है, अपने शिष्य को बुलाया, वो भी मायावी, वटु मायावी कल्पितम, ए बटो हमारे यहां हनुमान जी अतिथि आए हैं, ये राम जी का काम करने के लिए आए हैं, और जाओ ले जाओ उनको वहां जाकर के जल पिलाओ, वो तो अपना जलाशय है वहां जा, देखो वहां जलाशय में जाओ, आंखें खोल के मत जाना, आंख बंद करके जाना, आंख बंद करके तुम जितना जल पियो पी लो, उसके बाद तुम यहां आ जाना। हनुमान जी ने कहा ये तो कोई बड़ा भारी महात्मा है, कैसी कैसी बातें बनाता है और ऐसे सुनाता है। हनुमान जी गए तालाब में जाकर, कह रही हूँ आंख बंद किए पानी पीने लगे अपने, जो पानी पीने लगे जब हनुमान जी महाराज वहां गए तो एक मकरी मगरमच्छी थी, उस मगरमच्छी ने हनुमान जी को निगलना चालू किया अपने मुंह के अंदर। तब हनुमान जी को बहुत बुरा, आंखें खोले मगरमच्छी को मारा, पकड़ लिया उसके दो टुकड़े कर दिए। तब वो जो है दिव्य रूप धारण करके और हनुमान जी के सामने, हनुमान जी महाराज आंख बंद करके मत चलो, ये मायावी है, ये कालनेमी बड़ी माया जानता है, यहां तो ज्ञान की आंख खोल देख करके चलो, मैं अप्सरा हूं, मैं धान्यमाली नाम की अप्सरा हूं, एक बार मुझे ऋषि मुनियों की किसी तपस्या में बाधा डालने के लिए देवताओं ने भेजा, तब वहां एक मुनि ने मुझे शाप दे दिया कि जाओ तुम जल के अंदर मगरमच्छी होकर के रहोगी। तब मैंने उनसे प्रार्थना की, हे महाराज मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है, मुझे तो देवताओं ने आपकी तपस्या में बाधा डालने के लिए भेजा, मैं तो उनकी दासी हूं, मेरे उद्धार का कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब राम का अवतार होगा, उनका दूत जब किसी मायावी के जो है वहां आश्रम में आएगा, वहां पर तुम मगरमच्छी होकर के रहना और उसके चरण पकड़ लेना, उसकी कृपा से तेरा उद्धार हो जाएगा, आपने मेरा उद्धार कर दिया महाराज। अब आप ऐसा करो, ये आश्रम कुछ नहीं है, ये रावण ने इस कालनेमी को आपकी मार्ग में बाधा बनाने के लिए माया रची है, ये मुनि नहीं है, मुनि का वेश धारण किया हुआ है, ये जो आपके यहाँ इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अग्नय स्वाहा और वायवे स्वाहा जो कुछ बोलता है ये सब पाखंड है पाखंड, इस मुनि से जल्दी पिंड छुड़ाओ और आप जल्दी जाकर द्रोणाचल पर्वत से अपनी औषधि ले आओ, समय निकल जाएगा, मैं अब ब्रह्मलोक में जा रही हूं। प्रणाम किया हनुमान जी को और हनुमान जी महाराज को बता दी बात, हनुमान जी वहां से अब संभल गए। हनुमान जी देखो ये प्रसंग क्यों आया, रावण को इतना समझाते हैं पर रावण समझ में नहीं लाता, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको चाहे कहीं से ही कुछ बात मिल जाए वो बात को, ऐसी बात को पकड़ लेते हैं। हनुमान जी महाराज आए और पास में आगे कालनेमी जी, महाराज अरे आ गए, जल पी लिया, किम विलंब में देरी कैसे लगी आपको, बहुत देरी लग गई, आओ कोई बात नहीं हमारे पास आओ और हमसे मंत्र ले हो, और पहले हमको गुरु दक्षिणा भी भेंट करनी चाहिए, आपको गुरु दक्षिणा दोगे तब हम आपको भेंट देंगे। हाँ साहब गुरु दक्षिणा तो देनी ही चाहिए, मेरे पास देखो और तो कुछ है नहीं, और गुरु दक्षिणा में सीधा गला पकड़ दिया, ये मेरे पास मुक्का ही है और तो कुछ मेरे पास है नहीं, डागे दो चार मुक्के लगाए उसके यहाँ वहां, ग्रहण दक्षिणा में ताम, ये हमारी दक्षिणा लीजिए साहब। वो कालनेमी वहीं पर मारा गया और उसके बाद सीधे हनुमान जी महाराज गए, अरे बाधा आ रही है माया की, सीधे जाकर द्रोणाचल पर्वत पर गए, द्रोणाचल से उन्होंने वो देखा कि अब नहीं मिली औषध नहीं मिली, द्रोणाचल पर्वत को ही उठा लिया और ला करके उन्होंने राम जी के सामने कहा, महाराज आनी तो यम महागिरी, मैं तुम्हारा दवाई को पहचान नहीं सका, अब ये रही। तो कहा कि सुषेण वैद्य को लाओ, सुषेण वैद्य इनके साथ ही था, देखो यहां तो इनके साथ ही है, रामचरितमानस में तो आपको मालूम ही है भवन सहित ही उठा लाए हनुमान जी, लंका का था, डॉक्टरों के लिए वो प्रसंग बहुत अच्छा है। सुषेण ने कहा कि भाई मैं रावण के यहां रहता हूं, कि नहीं डॉक्टर किसी का नहीं होता है, डॉक्टर बीमार का होता है, डॉक्टर होता है वो जो यदि उसके सामने शत्रु भी बीमार हो तो भी वो बीमार समझ के दवाई देता है, शत्रु समझ करके नहीं देता है, बीमार समझ करके दवाई देता है, उसका कर्तव्य होता है। तो चिकित्सा कार्य आमास है, लक्ष्मण जी की थोड़ी देर में चिकित्सा की, थोड़ा नस्य दिया, सुंगे लक्ष्मण जी उसी समय जीवित तो हो गए और सबने तालियां बजाई, बंदर लोग बड़े खुश हो गए। राम जी ने कहा, हनुमान अब तुमको देख देख करके क्या कहूं वत्स, तुमने तो बहुत विलक्षण कार्य किया। त्वत् प्रसादा, तेरी कृपा से देखो हमारा लक्ष्मण आज जीवित हो गया। जैसे लक्ष्मण मेरा भाई, ऐसे तुम मेरे भाई। क्या महाराज, मैं तो आपके चरणों का सेवक। अच्छी बात है भाई, सुग्रीव के आनंद का कोई ठिकाना रह रहा, सब लोग बड़े आनंदित हो गए। इधर रावण को पता चला, अभिभूतो गमद्राजा राघवेण महात्मना सिंहासने समाविश्य राक्षसान इदम अब्रवीत। राक्षस राज राम से परास्त होकर जब ये लंका में आया और राक्षसों से बोलने लगा कि सुनो भाई राक्षसों, आप लोग मुझे बोलते तो हो और मुझे पता नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। ये पितामह ब्रह्मा जी ने पहले से ही नारायण से प्रार्थना की है और मानुषेण में मृत्यु आ है, और मनुष्य से मेरी मृत्यु होगी तो उनको मनुष्य बना करके और यहां भेजा है। वही दशरथ जी के बेटा होकर आए और मुझे मारने के लिए आए, और इसी राम के वंश में एक अनरण्य नाम का राजा था, उस अनरण्य राजा ने भी मुझे श्राप दिया था कि मेरे वंश में साक्षात भगवान अवतार लेंगे और तेरा विनाश करेंगे। मुझे तो लगता है कि राम ही मेरे विनाश के लिए आ गए हैं, पर एक बात है, मेरा विनाश एक बात से बच सकता है। मैं मर तो मैं मान लो राम से मर सकता हूं, लेकिन मेरा एक भाई अभी नींद के अंदर सोया पड़ा है, उसको यदि जगाया जाए और वो यदि आकर के पहले ही राम को मार दे तो फिर तो पर कोई बात ही नहीं है, और उसके बाद यदि मुझे जो है वो राम मारे तो राम को मारने का समय ही नहीं मिलेगा, राम को मारने का फिर अवसर क्या, और राम तो खुद ही मारा जाएगा कुंभकर्ण से, तो पहले कुंभकर्ण को जगाओ, आप लोग कुंभकर्ण के द्वारा अपने सब बच सकते हैं। तो कहा कि अच्छी बात है, अब कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण को बड़े प्रयत्न से जगाया गया, बड़ा भारी प्रयत्न करना पड़ा और कुंभकर्ण जग गए। अब कितना प्रयत्न करना पड़ा वो यहां नहीं बताया जाता है, खूब प्रयत्न किया गया। शरीर पर तीन तीन चार चार हाथी गए, हो हाथी चढ़ होगा, देखा ही होगा आपने रामायण में, भाले उसके पेट में घुसो में तो ही फर्क नहीं पड़े उसके। वो खर्राटा लेता था, खर्राटे की फूंक से हाथी उड़ जाते थे, ऐसा वो कुंभकर्ण। तो बड़ा उसको प्रयत्न करके जगाया गया। अब जो है जब रावण के सामने उसको उपस्थित किया तो रावण ने कहा कि कुंभकर्ण हमारे पर बड़ी भारी विपत्ति आ गई, बड़ा भारी कष्ट आ गया। क्या हुआ भाई साहब? राम ने हमारे प्रमुख प्रमुख सभी योद्धाओं को मार दिया, बेटे मर गए, पोते मर गए, राक्षस बहुत मर गए, सेनापति मर गए। अब तो ऐसा लगता है कि कहीं मेरी मृत्यु का समय न आए, पर मैं समझता हूं कि तेरे रहते मैं कैसे मर सकता हूं, तू इतना बलवान है। ये दशरथ का बेटा राम सुग्रीव के साथ बड़ी भारी सेना लेकर समुद्र के ऊपर पुल बनाकर उसको पार करके यहां आया है। बेचारे सुग्रीव हो चाहे दूसरे हो, इनमें क्या बल है, मूल तो इनका एक राम है, राम। और देखो राक्षस लोग जितने भी मारे जाते हैं, वे राक्षस लोग तो मारे जाते तो मारे ही जाते हैं, और कई कई बंदर क्या बताएं, अब बंदर मारे जाते हैं तो इतने बंदर और आ जाते हैं, वो आ जाते हैं कि इन्हीं में से कोई जीवित हो जाते हैं, कुछ पता नहीं है। हमारे बंदरों का तो नाश हो ही नहीं रहा है, राक्षस नाश को प्राप्त हो रहे। तुम एक काम करो भाई, सबका नाश करो, तुम बड़े बलवान हो, समर्थ हो, इसलिए कुंभकर्ण ये काम हम तुमको ही सौंपते हैं। जोर से हंसा कुंभकर्ण, अट्टहास पूर्वक हंसते हुए कहने लगा, वाह रावण वाह, जब 6 महीने पहले अपनी सभा लगी हुई थी उस सभा के अंदर मैंने आपसे कैसे कहा था कि आपने ये काम मान अनुचित किया है, मेरी बात पर तो आप ध्यान देते नहीं हो, और युद्ध में जब आप पर आफत आई है तो मुझे आप जगा करके मेरे बल का प्रयोग करना चाहते हो, वाणी का प्रयोग करना नहीं चाहते। हमने आपको कहा था कि रावण तुमने पाप किया है एक रहे, और इस पाप का फल भोग रही है सारी लंका, ये कोई न्याय है? तुमने सीता का हरण करके महान अपराध किया है, तुमने सीता को समझाई नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि राम मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण भगवान है, सीता कोई स्त्री नहीं है, सीता साक्षात भगवान की योग माया है। ये बात बताने से भी समझ में नहीं आई तो बताओ कैसे समझ में आ सकती है? हे रावण, उस दिन को याद करो, एक बार मैं विशाला एक मैं पर्वत शिला के ऊपर रात्रि में जंगल के अंदर एक विशाल पर्वत शिला पर मैं लेटा हुआ था। रात्रि के समय में मैं यूं लेटा हुआ था तो आकाश मार्ग से जाते हुए मैंने नारद जी को देखा। नारद जी का शरीर जगमगाने वाला, नारद जी के पास जो है बड़ा दिव्य तेज। उन नारद जी को मैंने कहा, महाराज आकाश मार्ग से ऐसे दिव्य जगमगे हुए आप कहां पधार रहे हो, कहां से आए हो? तो कहा, कौन बोलते हो? कुंभकर्ण बोलते हो? हां महाराज, आपका सेवक कुंभकर्ण। तो कहा कि देखो भाई, मैं अभी देवताओं की गुप्त सभा से आया हूं। देवताओं के यहां कौन सी गुप्त सभा है महाराज? ऐसा मैंने नारद जी से पूछा। उन्होंने कहा कि देखो, गुप्त सभा तो गुप्त ही होती है, उसके लिए पूछने की जरूरत क्या है? फिर भी तुमने पूछ लिया, अतएव मैं तुमको बताता हूं कि तुम्हारे और रावण से सारी जनता भयत्रस्त है, सब देवता डरे हुए हैं, सब ऋषि मुनि जितनी सात्विक शक्तियां हैं ये सब के सब परेशान हो गई, कष्ट में प्राप्त हो गई। तो ये सब इकट्ठे होकर के देवता लोग भगवान विष्णु के पास में गए थे, हम भी साथ में थे। अब विष्णु भगवान की बड़ी प्रार्थना की कि महाराज, ये रावण और कुंभकर्ण त्रिलोकी में कंटक बने हुए हैं, जल्दी इनका हमारे से उद्धार करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, मैंने उसको वरदान दिया था, उसमें उसने कहा कि मनुष्य से तो मैं क्या मरूंगा, मनुष्य को छोड़कर किसी से ही न मरूं। तो महाराज, अब आप मनुष्य शरीर में ही पधारिए और रावण रूपी और कुंभकर्ण रूपी कंटक का नाश कर दीजिए। तब जो है महाविष्णु ने खूब विचार करके कहा कि भाई ठीक है, हम जरूर अवतार लेंगे। तो उन्होंने हां भर दी है। तो उनके हां भरने के बाद हम लोग बहुत प्रसन्न हो गए हैं। उस प्रसन्नता के बाद हम जा रहे हैं उधर, जहां पर भगवान के भक्तजन भगवान की प्रतीक्षा करते होंगे, उनको भी यही समाचार सुनाना है कि देखो भगवान आएंगे, ऋषि मुनियों को सबको ये समाचार देने जा रहे हैं। ये समाचार आकर मैंने आपको भी सुनाया था कि अब भगवान है तुमको और हमको मारने के लिए अवतार लेंगे, सह अनिश्यति, वो सबको मारेंगे। इसलिए वो दशरथ के बेटा बनकर आए हैं रावण, वो ब्रह्म सनातन ब्रह्म है, आप उनके साथ बैर छोड़ दीजिए। वो केवल माया से ही मनुष्य बने हुए हैं, साक्षात भगवान है, छिपे हुए हैं लकड़ी में जैसे आग छिपी रहती है, दूध में जैसे घी छिपा रहता है, तिल में जैसे तेल छिपा रहता है, मैनी में जैसे ललाई छिपी रहती है, ऐसे भगवान छिपे हुए हैं, माया से मनुष्य बने हुए हैं, आप उनकी भक्ति कीजिए। और हे रावण, अपन दोनों भाई, जैसे अपना छोटा भाई तुमने बताया विभीषण उनकी शरण में गया, अपन दोनों भाइयों में क्या कमी है, क्या सोचने की समझने की क्या कमी है? अपने दोनों भी राम जी की शरण में चले जाए और उनकी भक्ति करें तो कितना आनंद होगा। ये युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये तो दुनिया सभी करती है रावण, अपने लोग अपने कितने अच्छे कुल में पैदा हुए हुए हैं, उनकी भक्ति करेंगे तो भक्ति ज्ञान को प्रदान करने वाली होती है, भक्ति मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। और सुनो रावण, इस भक्ति के बिना यदि संसार से यूं ही मर के चले गए तो बड़ा भारी अंत में जाकर हमारा नुकसान होने वाला है। रावण बड़ा अच्छा मौका है, भगवान के तो अनेक अवतार होते ही रहते हैं, हजारों अवतार होते हैं, लेकिन ज्ञान रूप का अवतार तो ये रामावतार है, बड़ा कल्याण करने वाला है। इसलिए रावण जितना प्रयत्न हम उनसे वैर विरोध करने में करते हैं, इतना प्रयत्न यदि राम के साथ प्रेम करने के लिए किया जाए कितना अच्छा रहे। बड़े बड़े योगी लोग बड़े सात्विक भाव से, प्रेम भाव से भगवान का भजन करते हैं और अनायास ही संसार को पार करके भगवान के विष्णु पद को प्राप्त हो जाते हैं। रामेव सततम, शुद्ध मन से भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करने वाले और उनके कथाओं को सुनने सुनाने वाले इस संसार में मुक्त हुए हुए हैं। संसार के भोग रूपी नागपाश से छूटकर सीतापति के चरणों में अनंत सुख है। रावण आओ, अपन दोनों गलबैया होकर उनके पास जाए और उनके चरण में जाकर अपने सिर उनके पास रख दे और उनकी भक्ति में लग जाए। कुंभकर्ण के वचनों को सुनकर के रावण की भ्रुकुटी तन गई और रावण कहने लगा, कुंभकर्ण तुम आनी तो न में ज्ञान बोधाए, तू ज्ञान देने के लिए मैंने यहां तुमको नहीं बुलाया है। मया कृतम समीकृत्य, जो भी मैंने किया है उसको ठीक मानो, उसके ऊपर नुक्ता चीनी मत करो। युद्ध करने की ताकत है तो युद्ध करो, और 6 महीने से पहले हमने तुमको जगा दिया, इस बात का खेद है तो जाओ रावण अपनी गुफा में जाओ, नींद ले ओ। मरेंगे जिएंगे तो हम देखेंगे, तुम तुम्हारी नींद की बाधा मत छोड़ो, जाओ नींद में पड़े रहो। कुंभकर्ण का भाई नाराज हो गए, सच्ची बात कही तो तुमको सहन नहीं हुआ, अपने मन की बात तुम हमसे करवाना चाहते हो और हमारे कल्याण की बात के ऊपर तुम रुष्ट हो जाते हो। अच्छी बात है, होनहार है सो होगा। रावण आओ एक बार अपने प्रेम से मिल लेते हैं, क्योंकि अब क्या पता कब मिलना हो न हो, आओ रावण मिल लेते हैं। रावण से गले मिले और कुंभकर्ण जी अब युद्ध के लिए जा रहे हैं। राम राघव राम राघव राम राघव आहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव साहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव
के चरण कमा।
केशव रक्ष
राम राघव राम राघव राम राघव पाही कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब रक्ष